आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्चना है। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कबीर की साखियां। इसमें कबीर जी के कुछ दोहे दिए हुए हैं, तो इसे पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा जान लें। कबीरदास जी का जन्म लगभग सन 1398 में हुआ था, और ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म लहर तारा ताल जो है उसमें ये मिले थे, काशी में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने अपना जीवन भी लगभग काशी में ही ज्यादा समय बिताया था। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के और भक्ति काल के एक ऐसे इकलौते कवि हैं जिन्होंने पूरे जीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात किया। वो कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और उनकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। उन्होंने अपना समस्त जीवन लोक कल्याण को समर्पित किया। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। कबीरदास जी ने जो भी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, इन दोनों ही धर्मों में जो भी बुराइयां जो थी, जो कमियां थी, जो गलत चीजें थी, उनको हमेशा मिटाने का प्रयास किया। लोगों को जागरूक किया क्या गलत है क्या सही है, उन्हें किस तरह से क्या काम करना चाहिए। तो इस चीज के बारे में उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई और जो भी गलत चीजें थी उन पर एक कड़ा प्रहार किया था, उन बुराइयों को समाज से दूर करने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए। कबीरदास जी के विषय में एक बात और रोचक है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने ये जो भी दोहे लिखे हैं, पद लिखे हैं, जो भी साखियां लिखी हैं, ये सब उन्होंने खुद नहीं लिखी थी, ये उन्होंने बोली थी और उनके शिष्य ने इनको लिखा था। भक्ति काल के लोकप्रिय कवि कबीरदास द्वारा रचित ये कबीर की साखियां, इनमें कबीर ने ज्ञान की महिमा, बाहरी आडंबरों का विरोध, मनुष्य को संयमता का पालन करने, घमंड का त्याग करने आदि पर जोर दिया है, इन बातों के बारे में बताया है। अपनी साखियों के माध्यम से कबीरदास ने कहा है कि ईश्वर की सच्ची साधना करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। कबीर की साखियां पढ़ते हैं, दोहे। पहला है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ साध का मतलब है साधु, और मोल करो मतलब मोल भाव करना, और म्यान जो खोल होता है कवर जिसमें तलवार रखी जाती है, तलवार की म्यान। कबीरदास जी मनुष्य को जाति को महत्व ना देने के लिए कहते हैं। ज्ञान का महत्व समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे ज्ञान की अधिक से अधिक बातें जान लेनी चाहिए। एक साधु का उद्देश्य किस लिए है? साधु के अंदर ज्ञान होता है, तो आप उससे ज्ञान की बातें पूछिए, उसकी जात पूछकर कुछ नहीं होगा। कबीरदास जी के समय में जात पात जो है वो हमारे समाज में बहुत व्याप्त थी, लोग जात पात को बहुत मानते थे, तो इसलिए वो कबीरदास जी इस चीज को सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि एक साधु में जो चीज है, जो विशेष चीज है, जो महत्वपूर्ण है, वो उसका ज्ञान है, ना कि उसकी जात। जात से कोई भी इंसान महान नहीं बनता है, कोई भी इंसान दुर्जन नहीं होता है। जात आपके बारे में कुछ नहीं बताती, तो इसके बारे में पूछना अर्थहीन है। और इसका कारण बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का भला साधु की जाति जानने में नहीं, बल्कि उससे ज्ञान की बातें जानने में है। कबीरदास मनुष्य से म्यान का मोल भाव ना करके तलवार का मोल भाव करने को कहते हैं, क्योंकि मनुष्य को म्यान से नहीं बल्कि तलवार से काम लेना है। म्यान में तो केवल तलवार रखी जाती है, उसका कोई और काम नहीं होता है। देखिए, अब अगर आप तलवार खरीदने जा रहे हैं तो आप तलवार की पहचान कीजिए, तलवार कैसी है, वो मजबूत है क्या, उसमें धार है, तेज धार है। क्योंकि अगर सोचिए आपने सिर्फ एक म्यान देख ली, जो उसका बाहरी कवच है उसको देख लिया, ठीक है, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत चमकीला, और आपने तलवार नहीं देखी, बस आप युद्ध में गए, सोचिए अब आपका क्या होगा। म्यान तो आपके काम नहीं आएगी, आपके काम क्या आएगा, तलवार, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। तो ऐसे ही जिस चीज का अर्थ है आप उसको देखिए, अर्थहीन चीजों को देखने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए तलवार का मोल करो, तलवार को देखो, उसकी जांच परख करो, ना कि म्यान का। म्यान को वैसे ही रहने दो। जैसे साधु में क्या है, साधु किस लिए पहचाने जाते हैं? साधु अपने ज्ञान के लिए पहचाने जाते हैं, तो इसलिए उनसे ज्ञान की बातें करनी चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, ना कि उनकी जात उनसे पूछनी चाहिए। जाति से कोई मतलब नहीं है। तो किसी इंसान की जात पूछने से कुछ नहीं होता है, कोई भी अपनी जाति से ऊंचा या नीचा नहीं होता है। इंसान अपने कर्मों से बड़ा या छोटा होता है, अच्छा या बुरा होता है, ऊंचा नीचा जो भी है, वो इंसान के कर्म उसे बनाते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप अच्छे नहीं हो सकते, चाहे आप कितनी ही ऊंची जाति में, ऊंचे कुल में जन्मे हैं। जैसे कबीरदास जी का एक और दोहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सोने कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। इसका मतलब है कि ऊंचे कुल में आपने जन्म लिया है, लेकिन आपके जो कर्म है, जो काम आप करते हैं, वो ऊंचे नहीं है। तो जैसे सोने का जो कलश है, सोने का लोटा है, उसमें अगर आप शराब भर देंगे तो साधु जो हैं तब भी उसकी निंदा ही करेंगे। जो भी सज्जन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो शिक्षित हैं, जो सही और गलत में फर्क करना जानते हैं, वो अगर आप सोने के लोटे में भी शराब भर देंगे ना, तो भी वो उसको बुरा ही कहेंगे। शराब शराब ही रहती है, सोने के लोटे में भर देने से वो अच्छी नहीं हो जाएगी। अच्छे लोग उसे अच्छा नहीं बताएंगे, वो उसको बुरा ही कहेंगे। तो ऐसे ही अगर आप बहुत ऊंची जाति में आपने जन्म लिया है, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो कोई आपको अच्छा नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप नीचे किसी जाति में जन्म लिया है, लेकिन अगर आप अच्छे काम करते हैं, तो लोग आपको अच्छा ही बताएंगे। तो ये जाति नहीं है जो आपको अच्छा या बुरा बनाती है, बल्कि ये आपके कर्म है जो आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो आप अपने कामों को अच्छा रखिए। इसीलिए यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की जात मत पूछिए, वो आपको कुछ नहीं बताएगी। जात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उससे ज्ञान पूछना है। साधु से आपको ज्ञान लेना है, कुछ अच्छी बातें सीखनी है, कुछ अच्छी बातें करनी है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार का मोल करो, तलवार को देखो, उसकी जांच परख करो, म्यान की नहीं। म्यान को रहने दो, म्यान को छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट दोहा, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। आवत का मतलब है आते हुए, गारी मीन्स गाली, उलटत उलटना, पलटना, पलट कर जवाब देना, होई होना, नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ पर कबीरदास जी मनुष्य को गाली ना देने की सलाह देते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है, तो उस समय वह एक ही होती है, एक होती है, लेकिन गाली सुनने वाला व्यक्ति जब उस गाली का उत्तर देता है, तो वो एक नहीं बल्कि एक से बहुत गालियां हो जाती हैं। इसके उत्तर में सुनने वाला व्यक्ति इससे और भी ज्यादा गाली देगा, तो इसका क्या परिणाम होता है कि गालियां घटने की जगह बढ़ती चली जाती हैं। तो इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को नहीं उल्टा जाएगा तो वो एक की एक ही रहेगी। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बुरा कहता है और आप भी उसका बदले में जवाब दे देते हैं, कुछ और बुरा कहते हैं, तो फिर अब वो सामने वाला व्यक्ति भी चुप नहीं बैठेगा, वो फिर से और कुछ बुरा कहेगा। तो मतलब ये बात जो है वो चलती ही रहेगी। आप उसे उल्टा कहेंगे, वो आपको और ज्यादा गंदा बोलेगा, आप उसे और ज्यादा गंदा बोलेंगे। आपने किसी को एक गाली दी, दूसरा आपको दो गाली देगा, आप उसे चार देंगे, फिर वो आठ देगा। मतलब ये बढ़ता ही चला जाएगा, जो बात है वो बढ़ती चली जाती है। ऐसे जो बात है फिर वो कभी खत्म नहीं होती। इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा ये है कि आवत गारी एक है। जब आपको कोई गाली दे रहा है तो वो सिर्फ एक गाली है, मतलब वो गाली दे रहा है, ठीक है। उल्टत होई अनेक, अगर आपने उसको उल्टा जवाब दिया, आपने भी पलट कर गालियां दी, तो बस फिर वो अनेक हो जाती है, क्योंकि आपने जवाब दिया, अब सामने वाला फिर से जवाब देगा, यही होता है। लेकिन कबीर जी क्या कहते हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। वो कहते हैं कि उल्टा मत कीजिए, आपको पलट कर जवाब नहीं देना। अगर कोई आपको गाली देता है, ठीक है, आप एक बार सुन लीजिए, एक बार चुप रह जाइए, एक बार शांत हो जाइए, अपना गुस्सा ठंडा कर लीजिए, तो क्या होगा, वो एक गाली एक ही रह जाएगी, वो एक गलत बात एक ही रह जाएगी और वो वहीं खत्म हो जाएगी। देखिए, कोई भी व्यक्ति खुद से ही बहुत देर तक नहीं चिल्ला सकता, जो बहुत सारी लंबी लंबी लड़ाइयां चलती हैं, लंबी लंबी से मेरा मतलब जैसे कुछ लोग बहस करने लग जाते हैं, घंटे दो घंटे तक आपस में झगड़ते रहते हैं बातों से ही और एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। वो लड़ाई घंटे दो घंटे तक इसलिए चलती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। पहले एक कुछ बोलता है, फिर दूसरा कुछ बोलता है, वो उसके बात का जवाब देता है, वो उसके बात का जवाब देता है, इसलिए ये जो लड़ाई है, ये झगड़ा है, ये बहुत लंबा चलता रहता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति बोले और दूसरा थोड़ी देर के लिए चुपचाप सुन ले तो मेरी बात मानिए, वो सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा देर तक नहीं बोल सकता। आप लिख लीजिए इस बात को, नहीं बोल सकता। कोई व्यक्ति अकेला कितना बोलेगा? अच्छा आप खुद सोचिए कि आप खड़े हुए, आपके सामने वाला व्यक्ति कितने भी गुस्से में आपको गालियां दे जा रहा है, पर आप पलट कर कुछ नहीं बोल रहे, कितनी देर तक वो बोलेगा आपको गालियां देगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और हद से हद 10 मिनट, और उसके बाद स्टॉप, लड़ाई वही खत्म। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपको कोई एक बात बुरी कहता है तो आप उसे उल्टा मत बोलिए, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो गालियां, वो गलत बातें वही खत्म हो जाएंगी। तो यही एक तरीका है लड़ाई को, झगड़े को बहुत जल्दी खत्म कर देने का, कि एक गाली को एक ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आपने उसे पलट कर जवाब दिया तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, अनेक हो जाएंगी। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि पलट कर जवाब मत दीजिए, वो एक गाली एक ही रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दोहा। माला तो कर मैं फिरे, जी भी फिरे मुहमाए, मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहे। कर मतलब हाथ, फिरे घूमना, जी भी मतलब जीभ, माही में किसी चीज के अंदर, उसके भीतर, मनवा मन, दहु दिस दस दिशाएं, दसों दिशाओं में, सुमिरन करना, स्मरण करना। इस दोहे में कबीरदास जी ने बाहरी दिखावा और आडंबर मानने वालों की आलोचना की है, जो लोग सिर्फ दिखावे का ढोंग रचते हैं, दिखावे की भक्ति करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर की बाहरी भक्ति या दिखावे का आडंबर करते हैं, वो अपने हाथ में राम की माला फेरते हैं, जीभ से राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं। वैसे तो वे हाथ में माला और मुंह में राम नाम जपते रहते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ आडंबर मात्र है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखाने के लिए ये वे लोग करते हैं कि हाथ में उनके माला घूम रही है, मुंह से राम नाम लिए जा रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, माला हाथ में ले रखी है, जप तप कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ छलावा है, लोगों के साथ धोखा है, वो छल रहे हैं उन लोगों को। वास्तव में उनका मन ईश्वर में लगे होने के स्थान पर दसों दिशाओं में भटकता फिरता है। असल में वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा में उनका मन लगता नहीं है, बल्कि उनका जो मन है वो दसों दिशाओं में भटक रहा है। जो भी 10 दिशाएं हैं, उनका मन जो है हर दिशा में भटक रहा है। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। सबसे जरूरी क्या है भगवान की पूजा, उनकी ईश्वर की भक्ति के लिए, कि आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होना चाहिए। कहाँ? भगवान की भक्ति के प्रति, सिर्फ ईश्वर के चरणों में आपका मन होना चाहिए, ना कि इधर उधर भटकता होना चाहिए। बाहरी आडंबरों से कुछ नहीं होने वाला है, मतलब अगर आपका मन ईश्वर भक्ति में लगता है तो फिर अगर आप हाथ में माला नहीं भी जपते हैं ना, तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने सिर्फ दिखावा करने के लिए अपने कपड़े रंग लिए हैं, जैसा कि आजकल ज्यादातर साधु करते हैं, मैं नहीं कहती सब, लेकिन कुछ लोग करते हैं ऐसा, सिर्फ अपने कपड़े रंग लेते हैं, ठीक है आपने संतरी के रंग के कपड़े पहन लिए या जैसे भी पहन लिए, और हाथ में एक माला ले ली और मुंह में राम राम या राधे राधे बोल रहे हैं, तो नहीं, ये नहीं मान सकते कि ये सच्चा भक्त है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ऊपर से ही ऐसे दिखते हैं, अंदर से उनका मन जो है वो एक जगह नहीं होता है, वो दुनिया की सारी चीजों की तरफ आकर्षित होता है, वो उनका मन जो है हर तरफ भटकता रहता है, उन्हें दुनिया की ये जो लुभाने वाली चीजें हैं ये उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो ये सच्ची ईश्वर की भक्ति नहीं है। जो सच्चा ईश्वर का भक्त होता है, उसका मन जो है वो एकाग्र होता है, एक जगह लगा के रखते हैं, वो सिर्फ अपनी ईश्वर की भक्ति की तरफ अपना मन लगा के रखते हैं, तो वही एक सच्चा भक्त है। तो कहते हैं कि अगर आपके हाथ में माला है और मुख से आप राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मन है वो दसों दिशाओं में भटक रहा है, तो फिर ये सुमिरन नहीं है, इसको भक्ति नहीं कहते हैं, ये सच्ची भक्ति नहीं है। नेक्स्ट, कबीर घास न निंदिए, जो पांव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हो, घास जो तिनका होता है, निदिए निंदा करना, तली नीचे पाँव तले पाँव के नीचे, होई होना, उड़ी उड़ना, आँख आँख, खरी खरी मीन्स ज्यादा, दुहेली कष्ट, दुख होना, दुख में पड़ जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मार्ग में पड़ा हुआ घास का टुकड़ा, कोई भी तिनका, कोई भी चीज, घास के टुकड़े का, उस तिनके का भी अपना एक अस्तित्व है, अपना एक स्थान है। चाहे घास का टुकड़ा पैरों के नीचे हो, मनुष्य को उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यही घास का छोटा सा टुकड़ा जब आँख में पड़ जाता है तो फिर बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो मनुष्य जब तक उस घास के तिनके को अपनी आंखों से बाहर निकाल नहीं लेता, उसे चैन नहीं पड़ता है, वो छोटा सा घास का टुकड़ा, एक तिनका, जब तक अपनी आंख से निकाल नहीं लेते तब तक आप आराम से नहीं बैठ सकते। तो कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो इतना छोटा है, ये तो कमजोर है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई स्थान नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। चाहे कोई कितना भी छोटा है, लेकिन हर चीज का अपना एक महत्व होता है, हर चीज अपना एक विशेष महत्व रखती है, हर किसी का अपना एक अस्तित्व होता है। तो आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है, हर चीज का अपना एक महत्व है, हर चीज समय आने पर काम आती है, अपना एक विशेष कार्य जो उसका होता है वो करती है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए जो पांव तले हो, आपके पैरों के नीचे जो घास है उसकी निंदा मत कीजिए, क्योंकि जब वही उड़ पड़े जब आंख में खरी दुहेली हो, क्योंकि जब वही उड़कर आपकी आंख में गिरती है तो आपको बहुत बड़ा कष्ट पहुंचा सकती है, बहुत बड़ा कष्ट पहुंचाती है। तो इसलिए उसकी निंदा मत कीजिए कि ये तो बहुत कमजोर है, ये तो बहुत छोटी है, ये क्या कर लेगा, ऐसे किसी चीज का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी शेर और चूहे की, जब एक बार शेर सो रहा था तो एक चूहा उसके ऊपर जाके खेलने कूदने लग जाता है, तो शेर एकदम से जाग जाता है और चूहे को पकड़ लेता है और बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कूदने की। चूहा जो है वो बहुत डर जाता है और वो माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी कभी जीवन में आपके काम आ सकता हूँ। तो शेर हंसने लग जाता है, कहता है ये जरा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा, चल फिर भी तुझे छोड़ देता हूँ। शेर उस चूहे को छोड़ देता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये जीवन में कभी मेरा कोई काम कर पाएगा या मेरे कभी किसी काम आ पाएगा, वो बस उसे छोड़ देता है और सोचता है कि ये छोटा सा चूहा मेरे किस काम आ सकता है, कुछ नहीं, और वो उस बात को भूल जाता है। लेकिन बहुत दिन बाद जब एक शिकारी आता है और वही शेर उसके शिकारी के जाल में फंस जाता है और वो चूहा वहां आ जाता है और वो उसे देख लेता है, तो चूहा अपनी फौज को बुलाकर, मतलब और चूहों को बुलाकर, उस जाल को जो है अपने नुकीले दांतों से काट देते हैं और शेर को आजाद करवा देते हैं। तब शेर को समझ आया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी से छोटी चीज भी आपकी मदद कर सकती है, बड़े से बड़ा काम कर सकती है। आज उस बड़े से शेर की, उस छोटे से चूहे ने जान बचाई थी, उसे शिकारी के चंगुल से छुड़वा लिया था, आजाद करवा लिया था। तो शेर ने उसकी बहुत तारीफ की और माफी भी मांगी जब उसने उसका अपमान किया था, उसका मजाक उड़ाया था कि ये छोटा सा चूहा मेरा क्या काम आएगा, तो इस बात की शेर उससे माफी भी मांगता है। तो इसी चीज से आपको समझना चाहिए कि हर चीज का एक अपना महत्व है, तो उसको आपको समझना चाहिए। जैसे एक तलवार है और एक सुई है, तो लोग कहते हैं कि जहां तलवार है वहां सुई की क्या जरूरत, सुई क्या काम कर सकती है। लेकिन बात यह है कि जो तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती, और जो सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। तो अगर आपको कुछ सिलना है तो आप तलवार से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सुई की ही जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज है, पर आपको उसी का महत्व समझना पड़ेगा, उसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आपको युद्ध में जाना है तो सुई लेकर आप नहीं जा सकते, आपके काम तलवार ही आएगी। तो हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व है, अपनी अपनी जरूरत पर हर चीज काम आती है। तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, भले ही वो एक घास का टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसका अपमान मत कीजिए। नेक्स्ट, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। जग संसार दुनिया, बैरी मतलब शत्रु, शीतल शीतल, डार दे डाल दे, कोई कोई भी या सबको। कबीरदास जी मनुष्य को घमंड का त्याग करने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का जन्म से शत्रु नहीं होता, इसलिए मनुष्य को अपनी वाणी में मधुरता और शीतलता बनाए रखनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धन बल सत्ता के घमंड में रहते हुए दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, घमंड में ना रहते हुए दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, दुनिया उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार करती है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में जन्म से कोई भी ना तो आपका मित्र होता है ना ही शत्रु होता है, मतलब जन्म से कोई आपका शत्रु नहीं है। जो भी बाद में शत्रु आपका बनता है वो बाद में ही बनता है, आपके व्यवहार से बनता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी वाणी में मधुरता और शीतलता बनाए रखें, मतलब हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करें और अच्छी बातें बोलें। अगर आप अपनी वाणी को अपनी बातों को अच्छा रखेंगे, हमेशा अच्छी बात करेंगे और अपना जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा रखेंगे, लोगों के साथ प्रेम से मिलेंगे जुलेंगे, प्रेम से बातें करेंगे, तो कोई आपका शत्रु नहीं बनेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी आपका जो घमंड है, चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे आपके पास बहुत सारा पैसा है या आप बहुत ताकत वाले इंसान हैं, बहुत बल है आपके अंदर, या आपके पास बहुत सारी पावर है चाहे किसी भी चीज की, इन सब चीजों का घमंड नहीं करना चाहिए। इन चीजों के घमंड को साइड में रख देना चाहिए। आपा को डाल दे, मतलब जो घमंड है उसको डाल दो, उसको छोड़ दो, घमंड को छोड़ दो, तो सभी आपके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, अच्छी भाषा का, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, बुरी बातें करेंगे या गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लोगों को घमंड दिखाएंगे, तभी लोग आपके शत्रु बनते हैं। कोई बहुत पहले से आपका जन्म से कोई आपका शत्रु नहीं होता है। जो भी आपके शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं आपने खुद बनाए हैं, अपनी भाषा से अपने व्यवहार से ही आपने उन लोगों को अपने खिलाफ किया है। तो मित्र भी आप खुद ही बनाते हैं, शत्रु भी आप खुद ही बनाते हैं। पहले से कोई जन्म से आपका कोई मित्र या शत्रु नहीं होता है, आपकी भाषा और आपका व्यवहार ही ये तय करता है कि कौन आपका मित्र बनेगा और कौन आपका शत्रु। तो अगर आप सभी से अच्छे से बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मतलब घमंड नहीं दिखाएंगे दूसरों को अपनी ताकत का, अपने पैसों का, तो सभी इंसान आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दुनिया आपके साथ सही व्यवहार करती है, अच्छे से पेश आती है आपके साथ। जैसे आप लोगों को ट्रीट करते हैं, लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सब आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आए, आपके साथ उनके सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध हो, अच्छे रिश्ते बने, तो आप उनसे अच्छी तरह से मधुर भाषा का प्रयोग करिए, शीतल भाषा का प्रयोग करिए, जिससे लोगों को भी प्रसन्नता हो और आपको भी प्रसन्नता हो। जैसे कबीरदास जी का एक और दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो, मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करिए जिससे हर किसी को प्रसन्नता हो, आप भी खुश होंगे और सामने वाला भी प्रसन्न होगा। जब हम अच्छी चीजें बोलते हैं तो ना वो सिर्फ सामने वाले को खुश करती है बल्कि आपके अपने मन को भी बहुत शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, अंदर से हमें खुशी मिलती है, ये संतुष्टि होती है अंदर से। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो मनुष्य का जो मन है वो अंदर से शांत होता है, अंदर से प्रसन्नता मिलती है। तो इसके लिए हमें अच्छी भाषा का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, अच्छे व्यवहार लोगों के साथ करने चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी दुनिया में आपका शत्रु नहीं बनेगा, कोई जन्म से आपका दुश्मन नहीं है। तो लोगों को दुश्मन मत समझिए, बस उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आइए, अच्छा व्यवहार कीजिए, कोई आपका दुश्मन नहीं है और सभी आपके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। प्रश्न अभ्यास पाठ से पहला प्रश्न, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, इस बात से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अनावश्यक वस्तु के बारे में जानकारी नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक चीजें जो अर्थहीन है उनको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। मनुष्य को उस व्यक्ति पर पूरा ध्यान देना चाहिए जिसकी उसे आवश्यकता है, उस चीज को महत्व देना चाहिए जो अर्थपूर्ण है, जिसकी जरूरत है। अगर व्यक्ति तलवार खरीदते समय तलवार की धार, उसकी मजबूती, उसका पैनापन, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देगा और जो म्यान होती है उसकी वो चमकीली है, उसकी सुंदरता पर ध्यान देगा, तो फिर उस तलवार का कोई लाभ नहीं है जिसमें पैनापन और धार ना हो। तो इसलिए किस चीज पर ध्यान देना है, जो चीज आपके काम की है, जिसका महत्व है, जिसकी जरूरत है, उस पर ध्यान दीजिए। जो बेकार की चीजें हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। दूसरा प्रश्न, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर की बाहरी भक्ति और दिखावे का आडंबर करते हैं, वो अपने हाथ में राम नाम की माला फेरते हैं और मुंह से राम नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका मन जो है वो दसों दिशाओं में घूम रहा होता है, भटकता फिर रहा होता है, ऐसे ध्यान लगाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मन तो अपने स्थान पर स्थित नहीं है, एकाग्रचित नहीं है। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का ध्यान अपने विषय पर केंद्रित नहीं होगा तो वह कुछ नहीं सीख पाएगा। सिर्फ बाहरी दिखावा करना ये जरूरी नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर आपका मन जो है वो दसों दिशाओं में भटक रहा है तो ये सुमिरन नहीं है, ये सच्ची भक्ति जो है वो नहीं है। तीसरा प्रश्न, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर घास की निंदा करने से मना करते हुए कहते हैं कि घास का टुकड़ा चाहे जमीन पर पड़ा हो, वह अपना विशेष अस्तित्व रखता है। मनुष्य को घास के टुकड़े का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब यही घास का टुकड़ा आंखों में गिर जाता है तो बहुत कष्ट होता है, ये बहुत बड़े कष्ट का कारण बनता है। तो मनुष्य जब तक उस घास के तिनके को अपनी आंख से बाहर नहीं निकाल लेता, उसे चैन नहीं मिलता। तो घास के टुकड़े का दूसरा अर्थ है समाज में रहने वाले दीनहीन व्यक्ति, जिसे हम महत्वहीन समझते हैं। तो कोई भी व्यक्ति महत्वहीन नहीं है, सबका अपना अपना महत्व होता है, सबका अपना अपना काम है, और जो लोगों को आप छोटा समझते हैं असल में वही हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। अगर वो लोग ये काम ना करें तो सोचिए आपके ये काम कौन करेगा। तो इसलिए उनका अपना एक महत्व है, उन्हें छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। चौथा प्रश्न, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। मनुष्य का अपना व्यवहार ही दूसरे लोगों को दोषी या विरोधी बना लेता है, और कोई भी जन्म से आपका शत्रु नहीं होता है, ये इस दोहे का भावार्थ है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। पाठ से आगे, या आपा को डार दे दया करे सब कोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्या आपा स्वार्थ के निकट अर्थ देता है या घमंड का। इन पंक्तियों में आपा का अर्थ है घमंड। जब मनुष्य अपने धन बल सत्ता आदि के कारण दूसरे व्यक्ति को अपने से हीन समझने लगता है तो उसे घमंड आ जाता है। इस प्रकार आपा का अर्थ है घमंड, और यहाँ पर घमंड को छोड़ देने की बात कही गई है। दूसरा प्रश्न, आपके विचार में आपा तथा आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। आपा और आत्मविश्वास, आपा और आत्मविश्वास तथा आपा और उत्साह में अंतर होता है। इसे इस प्रकार कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने आपा के कारण दूसरों को हीन समझता है तो वह अपने विनाश को निमंत्रण दे देता है। संसार में कई ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने आपा को आत्मविश्वास नहीं बल्कि घमंड समझा और उनका समूल नाश हो गया। जैसे कि रावण, कंस, दुर्योधन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने घमंड किया अपने ऊपर, जिसकी वजह से इनका विनाश हुआ। इन्होंने अपने आपा को अपना आत्मविश्वास न समझकर घमंड में परिवर्तित कर लिया था, इसलिए उनका विनाश हुआ। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास है तो वह बड़े से बड़े कार्य को आसानी से पूरा कर सकता है। आत्मविश्वास दूसरी चीज है, अपने ऊपर भरोसा करना कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, वो आत्मविश्वास है। और आत्मविश्वास से आप बड़ी से बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। आपा और उत्साह, किसी काम को करने की उमंग को उत्साह कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम पर विजय पाने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम उत्साह पूर्वक अभ्यास में जुट गई। उत्साह, आपके अंदर किसी काम को करने की चाह है और आप उसे खुशी से करना चाहते हैं, वो उत्साह कहलाता है। तीसरा, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। साखी शब्द साक्षी के तद्भव रूप से बना है, इसका अर्थ है आंखों से देखा हुआ। साक्षी ये इस बात का साक्ष्य है, मतलब सबूत है, गवाही या देखने वाला, गवाह जो गवाह होता है कि ये इसका गवाह है, मतलब इसने उस चीज को देखा है, तो साक्षी, ठीक है, ये उस बात का साक्ष्य है, सबूत है। कबीर ने विधिवत कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, उन्होंने अपने अनुभव से जो कुछ देखा या सुना उसे अपने ढंग से साखियों के रूप में व्यक्त किया। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है कि इसमें कबीर की कल्पना नहीं बल्कि जीवन का सत्य प्रकट होता है। उन्होंने सिर्फ ये दोहे अपनी कल्पना के आधार पर नहीं लिखे थे बल्कि उन्होंने अपने समाज में जो भी देखा, अपने आसपास जो हो रहा था, उन्होंने उसी को उसमें लिखा। उन्होंने साखियों में जो ज्ञान दिया वह पुस्तक से प्राप्त ज्ञान नहीं बल्कि गुरु के उपदेशों से प्राप्त था। उन्होंने जो लिखा वो कहीं उन्होंने किताबों में नहीं पढ़ा था बल्कि अपने गुरुओं के उपदेशों से प्राप्त किया था और चारों तरफ जो उनके समाज में हो रहा था, आसपास जो चल रहा था, उससे प्राप्त ज्ञान था और उसी से उन्होंने ये चीजें लिखी थी, इसलिए उसे साखी कहा जाता है क्योंकि वो उसके साक्षी थे उन चीजों के जो उन्होंने देखा। तो आपको ये दोहे समझ आ गए होंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।